शांति। उषा बहन जी का क्लास अनाउंस हुआ था, क्योंकि उषा बहन जी दोपहर 1 बजे तक शांतिवन पहुंचने वाले थे, लेकिन उनको मैं सुबह से ही फोन कर रही थी, तो दोपहर 4:30 बजे 4:45 के बीच में उनको फोन लगा, तो कहा मैं अभी अहमदाबाद से निकली हूँ, पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने शिलू दीदी से बात की, मैंने कहा दीदी आप क्लास कराओ, तो उन्होंने कहा मैं तो शांतिवन में हूँ। फिर शशि दीदी को कहा, तो आपको पता नहीं थोड़ा उनका कुछ समय पहले हेल्थ ठीक नहीं थी, और वो 4:45 बजे शांतिवन से आए, तो वो रेस्ट में थे तो बात नहीं हुई। फिर शिलू दीदी को कहा तो वो कहने लगे कि आप क्यों नहीं क्लास कराते हो। मैंने कहा जैसे आपकी आज्ञा। तो इसीलिए जो बाबा सेवा दे वो तो सेवा करनी ही है। मैंने दीदी को कहा, शिलू दीदी को, कि कोई मधुबन निवासी क्लास करे तो ज्यादा अच्छा हमारे भाई बहनों को मिलता है, कहते कम पॉइंट्स नहीं मिले हैं। सभी मधुबन वालों ने ही तो क्लास कराए हैं, इसीलिए जो हमको माल मिला है उस माल को क्या करना, उसको अंदर में इतना समाना है, मनन चिंतन करना है कि जो हम तपस्वी मूर्त बन जाए। बातें तो बहुत मिलती है, ज्ञान के पॉइंट भी हमारे पास बहुत होते हैं। रोज बाबा की वाणी से हम इतने ज्ञान रत्न प्राप्त करते हैं। रेगुलर मुरली सुनने वाले भाई बहने ज्ञान की बातों को यथार्थ रूप से समझते भी है, और कहीं बार हम पॉइंट का वर्णन भी बहुत करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं बच्चे तपस्वी मूर्त बनना अर्थात पॉइंट स्वरूप बनना है। नहीं तो हम पॉइंट तो याद करते हैं कि बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति आ जाए तो क्या समझो, क्या समझो, नथिंग न्यू, और क्या समझो, साइड सीन, और क्या समझो, ड्रामा। कह रहे हैं परिस्थिति आई, ड्रामा अनुसार बहन जी आई, लेकिन कह रहे ड्रामा और अंदर में क्या है, हलचल है। तो वो पॉइंट जो है उसको हमने शक्ति रूप में यूज कहाँ किया। जब हम नथिंग न्यू कहते हैं या ड्रामा कहते हैं या एक पार्ट समझ लेते हैं, लेकिन उस पॉइंट के स्वरूप हम नहीं बनते। इसीलिए हमें ज्ञान की बातों का चिंतन करते हुए उसको अनुभव में लाने की जरूरत है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तपस्वी मूर्त बनो। अब तपस्वी मूर्त बनने के लिए हमारे में कौन सी योग्यताएं या विशेषताएं या कौन सी धारणाएं हमें अपनानी है, तो सबसे पहली धारणा हमारी दिनचर्या। ब्राह्मण जीवन की जो ब्रह्मा बाबा ने या मधुबन के हिसाब से जो दिनचर्या चलती है, तो हम अपने से पूछे कि मेरी दिनचर्या उस प्रमाण होती है। जैसे हम पहली पहली बाबा की श्रीमत है, अमृत वेले उठकर बाबा को प्यार से याद करना है। हम अमृत वेले तो उठते हैं, परंतु कैसे याद करते हैं। कभी कभी बाबा मुरली में वर्णन करते हैं कि बाबा जब चक्र लगाते हैं तो बाबा क्या देखते हैं, हठ योगियों का म्यूजियम देखते हैं। हठ योगियों का म्यूजियम अर्थात कोई कैसे होते, कोई कैसे, मन की स्थिति भी तो शरीर की भी। इसीलिए कहीं बार हम योग में तो बैठते हैं, जैसे हमें ये धारणा बताई जाती है कि बेड पर बैठ करके योग नहीं करना है। कहीं एकांत में एक जगह हमारी हो जहां पर बैठ करके ही हम योग करें। स्थान का भी महत्व बताया है कि जिस स्थान पर हम रोज योग करने के लिए बैठे वो घर में भी हमारा स्थान फिक्स होना चाहिए। क्यों फिक्स होना चाहिए योग के लिए स्थान? वाइब्रेशन होते हैं जो हम संकल्प करते रोज वहां बैठ बैठ कर, ऐसे वाइब्रेशन तपस्या के बन जाएंगे कि अगर उस स्थान पर हम जाकर के बैठे तो योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए देखो कहीं लोगों का ये अनुभव होता है कि जैसे स्थान बदल जाता है ना तो उनको नींद नहीं आती। तो ऐसे हमारा भी, हम घर में तो स्थान फिक्स कर सकते ना, यहाँ तक कि सेंटर पर भी कई भाई बहनों के स्थान फिक्स होते हैं। क्योंकि परमधाम में भी हम सभी का स्थान, कितने हजार वर्ष के बाद जाएंगे परमधाम में? 5000 वर्ष के बाद, तो भी आत्मा एक्यूरेट अपने ही स्थान पर जाकर बैठेगी। यहाँ तो फिर भी बिठाने वाले होंगे, वहां पर कोई नहीं होता तो भी आत्मा उसी अपने स्थान पर जाकर बैठती है। तो स्थान का भी महत्व होता है, इसीलिए हमारा अमृत वेले योग करने का जो स्थान है वो घर में फिक्स होना चाहिए। और फिर फ्रेश होकर के हम बैठे, ऐसे नहीं बैठे तो बैठे तो है परंतु बाबा आप ही नीचे आ जाओ, आप ही नीचे आ जाओ। तो इस तरह से अगर हम अमृत वेले का समय कैसे चला जाएगा? शक्तिशाली अमृत वेला होगी। इसीलिए अमृत वेले योग करने के लिए कई बार सूरज भाई भी बताते हैं, लेकिन रात्रि सोने के पहले जो हमारा समय होता है उस समय हम जो चिंतन करते हैं, साइकोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि वो चिंतन हम सोते सोते करेंगे तो उसी में ही जैसे कि वो बुद्धि में फिट हो जाता। वैसे भी लौकिक दुनिया में कहते हैं मनी असेते, तो हमारे हमें तो बाबा ने कितनी युक्तियां बताई कि बच्चे सोते समय बाबा को याद करके कोई बहुत अच्छे स्वमान की स्मृति रखते और फिर बाबा के गोद में जाकर सो जाओ, और जिस स्मृति में हम सोएंगे वो ही स्मृति में हम जाग जाते हैं, और फिर उठते से ही बाबा को देखने का अभ्यास पक्का हो, गुड मॉर्निंग करने का अभ्यास पक्का हो। नहीं तो कहते हैं ना, पता नहीं आज किसका मुख देखा, मेरा दिन बिगड़ गया। तो हम ब्राह्मणों की कभी ये कंप्लेन हो ही नहीं सकती, आंख खुलते ही बाबा को देखे, बाबा को याद करे और फ्रेश होकर के अमृत वेला करे, क्योंकि अमृत पान करने का वो समय है, बाबा से प्यार पाने का वो समय है, शक्तियों की अनुभूति करने का समय है। और उस समय पर हम अलर्ट होके न बैठे, मान लो कनेक्शन लगा भी दिया परंतु लूज है, मोबाइल की बैटरी चार्ज होगी? 8 घंटा भी अगर रखा है पर लूज कनेक्शन है तो वहां भी बैटरी चार्ज नहीं होती। तो यहाँ भी अगर कनेक्शन लूज है, हाँ ठीक है बैठे तो है, कोई संकल्प नहीं, कोई इधर उधर थोड़ा सा ऐसे ऐसे बैठे है, तो संकल्प हमारा इतना श्रेष्ठ हो, पावरफुल हो, या कोई विशेष स्वमान की स्मृति हो, संबंध की स्मृति रहे, या गुण प्राप्ति को हम याद करें और फिर उस खुशी से बाबा को याद करें, ताकि अमृत वेला हमारा पावरफुल हो जाए। बाबा कहते हैं ना कि अमृत वेले बाबा खुद आकर के हम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। जो बच्चे अगर अमृत वेले बाबा चक्र लगाने आए और हम सोए हुए होंगे तो कैसी अनुभूति करेंगे? बाबा श्रृंगार कैसे करेंगे। इसीलिए एक बार बहुत अच्छी बात कही थी संतोष दीदी ने कि एक माँ होती वो अपने बच्चे को सुबह सुबह नहलाती श्रृंगार करती और फिर काम में लग जाती, पर अगर कोई दिन बच्चा जल्दी नहीं उठता है तो माँ काम में लग जाती है, फिर जब उसको फुर्सत मिलेगी तब वो क्या करती, वो तब उसकी तरफ ध्यान देगी। तो ऐसा न हो हमारे लिए, इसीलिए हम अमृत वेले उस तरह से बाबा को याद करें जो बाबा ने युक्तियां या विधि बताई है, तभी तो कहा जाता विधि से सिद्धि प्राप्त होती है और अमृत वेले का पावरफुल योग। तो ये पहली निशानी, जो योगी हम कहते हैं या तपस्वी हमें बनना है तो हमारा योग कैसे हो अमृत वेले का, उसकी तरफ हमारा विशेष अटेंशन हो। ढीला ढाला योग नहीं, साधारण योगी नहीं, हम राज योगी आत्माएं हैं। सारे योगों का राजा है ना योग, तो हमारी स्थिति भी ऐसी बन जाए। दूसरी बात, हम सवेरे चा अमृत वेले से लेकर 8 बजे तक मौन का अभ्यास करें रेगुलर, कर सकते हैं जो भाई बहने अभ्यास करते वो हाथ उठाओ, बस देखें। पर जो नहीं भी करते हैं तो अटेंशन रहे कि हमें मौन में रहना है, तो ये 4 घंटा मुझे अपने लिए रखना है, और अगर कभी बात करने की जरूरत भी पड़े तो बाबा कहते हैं बच्चे इतनी धीमी बात करो कितना जो एकदम कान में सुना दो। ऐसे तो जरूरत होती भी नहीं है, आदत पड़ने के बाद बात करने का आवश्यकता भी नहीं लगती है, परंतु हमारा अटेंशन कहीं बार अच्छा टेंशन होता है और कभी कभी फिर क्या होता कुछ सेवा के प्लान बन जाते, कहीं मेहमान बनकर चले जाते या लौकिक कुछ जिम्मेवारियां निभाते तो थोड़ा अटेंशन फिर डाइवर्ट हो जाता। इसीलिए आवश्यकता है कि हमें अमृत वेले के बाद यानी अमृत वेले से लेकर 8 बजे तक मौन का अभ्यास हम जरूर करें। हफ्ते में 1 दिन भी हम मौन जरूर रखें, अगर हो सकता तो सोमवार के दिन ज्यादातर मौन रखते हैं, पर भाइयों को छुट्टी नहीं होती है तो छुट्टी के दिन भी हम मौन रख सकते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं हम कम बात करते हैं, ये तो बाबा ने कहा ही है, वाणी की मर्यादा हम सब रिपीट करते ही है, कम बोलो और सोच कर बोलो, है ना। तो ये हमें पता है लेकिन मौन का महत्व अपना है, क्योंकि मन का भी मौन और वाणी का भी मौन, उससे हमारी आत्मा की शक्ति जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए बाबा कहते मौन रखो, मौन से फिर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर जैसे गुफा की तरह चिंतन चलता रहे ज्ञान का। बाबा कहते हैं ना तपस्वी कहाँ बैठे होते हैं, गुफा में होते हैं, तो हमारी गुफा कौन सी है, अंतर्मुखता की गुफा, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो हम इस गुफा में बैठने का अभ्यास करें। अंतर्मुखी शब्द हम प्रयोग कर लेते हैं, अंतर्मुखता का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि हम अंतर्मुखी हो गए माना मौन रख लिया। अंतर्मुख शब्द आता है क्योंकि ये मुख के ऊपर जितनी भी इंद्रियां है ना, इन सभी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना है। मुख शब्द इसीलिए ही है, मुख केवल वाणी के लिए नहीं कहा गया। जैसे हम सुन रहे थे आज भी सूरज भाई ने वो बात रिपीट की और डॉक्टर सचिन भाई ने मुरली की रिवीजन की, उसमें भी विशेष इस बात का अटेंशन दिलाया। कौन सी बात का, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। तो हमने ऐसे हम करते ही है, लेकिन और अंडरलाइन कराई गई। और फिर ये भी बात नष्ट मोहा बनने के लिए विशेष सूरज भाई ने कहा, मेरा बच्चा है ये नहीं, क्या देखो, आत्मा को देखो। ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता, ये मत कहो। जब आत्मिक दृष्टि हमारी बन जाती, आत्मिक वृत्ति हमारी बन जाती, तो कोई हमारी बात न माने ये हो नहीं सकता। और बाबा भी यही बात कहते हैं कि रूहानी वृत्ति दृष्टि हो। रूहानी वृत्ति दृष्टि का अर्थ ही है आत्मिक भाव, आत्मा को देखे, आत्मिक दृष्टि रखे और साथ साथ गुणग्राही दृष्टि हो। जैसे बताए ना कि बाबा की धारणा क्या है और हम ब्राह्मणों की धारणा क्या है, क्या अंतर है बाबा में और हमारे में। यदि किसी आत्मा में 9 अवगुण होंगे और एक ही गुण होगा तो बाबा की दृष्टि गुण पर जाती है, और हम मनुष्यों की दृष्टि 9 गुण होने के बाद भी हमें अवगुण ही नजर आते हैं। इसका कारण है कि ये हमारा अभ्यास है आधा कल्प का। लेकिन उस अभ्यास को परिवर्तन करने की शक्ति संगम युग पर बाबा देते हैं ना। तभी तो बाबा इतना ऊंचा होमवर्क देते कि बच्चे ऐसा करो, 63 जन्म के विकारी संस्कार, तमो प्रधान संस्कार, थोड़े समय की तपस्या से बाबा परिवर्तन कराते। चलो दादियों ने 80 साल तपस्या की, महारथी आत्माएं उनको भी बहुत समय मिला, हमको कहां इतना समय है। परंतु बाबा जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत को धारण करने के लिए विशेष शक्ति भी हम सबको देते। ऐसे नहीं बाबा ने कभी कहा कि 80 साल वालों को विशेष, 50 साल वालों को फिर उससे कम, कहां कभी, 5 साल वालों को कम। बाबा ने तो सदैव एक बात कही, लास्ट तो फास्ट, फास्ट तो फर्स्ट जा सकते हैं। जो जितना धारण करे, ओटेसो अव्वल नंबर भी ले सकते, अर्जुन भी बन सकते। तो हमें खुला बाबा ने निमंत्रण दिया, खुली स्टेज दी, जितना चाहिए उतना हम प्राप्त कर सकते। केवल अटेंशन का पहारा जबरदस्त चाहिए। किसके ऊपर अटेंशन? अपना स्वयं के स्वयं का स्वयं पर अटेंशन। हमारा अटेंशन बहुत जल्दी दूसरे की तरफ जाता, अपने तरफ कम जाता। इसीलिए हमें मेहनत महसूस होती है, इसीलिए कहा अंतर्मुखी। तो दृष्टि की रूहानी दृष्टि हो, गुणग्राही दृष्टि हो, सुखदायी दृष्टि हो। दृष्टि भी क्या करती, सुख भी देती, दुख भी देती। थोड़ा ऐसे आंखें करके देखो। इसीलिए सुखदायी दृष्टि हो। कान क्या काम करते, मुख में ही है ना ये इंद्रिया, तो इन कानों से वही बातें सुननी है कि जिससे मुझ आत्मा का उमंग उत्साह बढ़े। ऐसी बातें नहीं सुनो कि जिससे मेरी तपस्या में विघ्न आ जाए। कहीं भाई बहने यहां वहां जाते हैं, इधर उधर की बातें सुनते हैं, जिसको बाबा कहते ब्राह्मण परिवार का संसार समाचार, और वो बातें सुनने में बहुत इंटरेस्ट लेते क्योंकि वो दिलचस्प बातें होती है ना, मायावी बातें। ऐसे सुनते रहेंगे, फिर कभी कोई बात आ ही जाती है तो बहने कहती भाई ऐसी बातें नहीं सुनना, नहीं बहन जी हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ असर नहीं होता। उसने सुना दिया क्या हुआ, असर जरूर पड़ता है। जब बाबा कहते हैं कि बच्चे झर मुई जंग मुई आ न करो न सुनो, जब बाबा कह रहे हैं तो जरूर उसका हम पर असर पड़ता है, तभी तो बाबा कहते हैं सुनो नहीं। अगर कई कई की बातें ना, कई कई ने मंत्रा की बात न सुनी होती तो राम को वनवास में जाना नहीं पड़ता। तो ऐसे कभी न कभी वो बातें दृष्टि में असर करती है। इस भाई के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं, मैं तो बहुत अच्छी तरह से देख रही थी, पर मैं उनके साथ बात करती, प्यार से करती, कुछ सेवा देती, कोई आके कहेंगे बहन जी आपको पता नहीं वो भाई कैसे हैं। अब मैं रिलेशन नहीं बिगाड़ूंगी, लेकिन जब भी वो भाई मेरे सामने आएगा तो मन में क्या चलेगा, जो पहले कभी नहीं था मन में, अभी थोड़ा सा मन में थोड़ा सा संभाल के चलना चाहिए। अरे जो जिसने मुझे सुनाया, हो सकता है कि उस आत्मा का उस आत्मा के साथ कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब होगा, पर वो हम कभी भी याद नहीं करते। अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा हुआ ध्यान पर दिया, संभाल कर चलेंगे। तो कहने का भाव यह होता है कि हमारी वृत्ति में वो बात इतनी गहरी चली जाती कि हम उस आत्मा को बिना कारण बिना वजह सूक्ष्म रूप में आत्मिक भाव से थोड़ा नीचे उतर आते। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जैसे इतना सारा दूध है 2-4 लीटर का, और उसमें एक ड्रॉप अगर विष का डाला जाए तो सारा दूध क्या हो जाएगा, विषमय बन जाता है। तो इसी प्रकार से ये परचिंतन परदर्शन परमत की जो बातें हैं वो उस समय सुनने में बहुत मीठी लगती, पकौड़ी की तरह होती है ना। चलो हम कुछ आंसर नहीं करते हैं, कई भाई बहन आंसर भी नहीं करते, सुन लेते हैं, परंतु सुनने का असर होता है। इसीलिए बाबा कहते नहीं सुनो। व्हाट्सएप पे मैसेज आता, बुराई करना ये सुनना भी रोमिंग की तरह ही होती है, सुनो तो भी चार्ज लगता और करो तो भी चार्ज लगता है। क्या चार्ज लगता, सुनने से भी सूक्ष्म में असर तो आता ही है, और करेंगे तो भी थोड़ा तो पाप का खाता जमा होता ही है। इसीलिए न सुनो न करो, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म बात है और ये बहुत बड़ा ब्राह्मण जीवन में विघ्न भी है। बाबा कहते ये 3 पर काट दो और एक ही पर धारण करो, वो कौन सा, परोपकार। परोपकार की भावना जागृत रहे, मुझे तपस्वी बनना है। जैसे कहते वो रनर होते हैं, वो अपना वेट का इतना ध्यान रखते हैं, एक चॉकलेट भी कोई दे तो कहते नहीं, वो इतनी भी चीज एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे। क्यों, उनको प्राइज लेनी होती है। हमको तो बाबा विश्व की बादशाही देने आए, सो भी कितने जन्म की, इसके बारे में कभी सोचा, 21 जन्म, और वो भी कितनी आयु रहेगी। अब देखिए एक एक जन्म आप बुद्धि नेत्र के सामने लाओ, जहां इतनी प्राप्ति है, तन मन धन जन संबंध सब कुछ प्राप्त है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में। कोई प्राप्ति के लिए हमें उसके पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, प्राप्ति के लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, जो संगम युग पर हम पुरुषार्थ करते हैं उसकी प्रारब्ध है। दुनिया में तो एक जन्म 5 साल की कुर्सी के लिए उसकी भी गारंटी नहीं। कितनी मेहनत करते, कोई निंदा कर रहा, कोई दुख दे रहा, क्या क्या कर रहे, तो भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। इलेक्शन आते तभी भी हम देखते तो उनको देख के यही सोचते कि 5 साल की कुर्सी के लिए, एक छोटे से नगर सेवक के पद के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बॉम्बे में तो 6-6, 7-7 माला चढ़ना उतरना पड़ता, सब जगह तो लिफ्ट भी नहीं होती है, और फेरी निकलते ना तो सब जगह जाते हैं, सब जगह ऊपर नीचे चढ़ते, कितनी मेहनत करते 11-11, 12-12 बजे तक। और बाबा हमको कितनी बड़ी प्राप्ति करा रहे हैं। तो कभी हम संकल्प में भी अगर ऐसी कोई बात आ जाए तो ये सोचो, एक जन्म की केवल प्राप्ति नहीं, 21 जन्मों के लिए बाबा हमें इतनी ऊंची प्राप्ति करा रहे और हम क्या करते। और हम सब आपस में संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं हैं, और हम आपस में बैठ करके एक दूसरे की क्या कर रहे, अच्छा लगता है। एक बार दादी जानकी मिल रहे थे तो दादी ने कहा, अगर किसी को ये संस्कार है परचिंतन परदर्शन का, तो एक दिन इतना कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो, उसके बाद फिर नहीं, फिर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाए। परंतु इस चीज का नौशिया आता ही नहीं है, वो इतना पक्का और कड़ा संस्कार है। अंतर्मुखी हम कैसे बनेंगे, न सुनने वाला बन सकता न सुनाने वाला बन सकता। इसीलिए इसको अंडरलाइन करना है, सच्चा तपस्वी मूर्त बनने के लिए अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहर मुखी फिर एक चुप और एक बोल, महाभारत है ना, महत्व है ना। इसीलिए हमको करना क्या है, हमारी वाचा कैसी हो। घर में भी एक दिन सेंटर पर एक बच्चे का फोन आया, 10 साल का बच्चा था, उसको माँ ने कुछ होमवर्क दे के आई कि मैं सेंटर से आती हूँ तब तक तुम ये करके रखना। तो बच्चे ने वो कुछ होमवर्क किया नहीं, और मम्मी मुरली सुन करके गई, और उसके बाद जाकर के पूछा, क्योंकि उसको स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करता था, इसीलिए उसको वो माँ ने कुछ दिया था। तो उसने नहीं किया तो माता जी ने घर में जाकर उसको डांट तो लगाई लेकिन हाथ भी उठाया। उस बच्चे ने सीधा फोन लिया सेंटर का और फोन किया, बोला भी नहीं माँ को, और बोलता है, दीदी पता है मम्मी मुरली सुन के आती और इधर आके क्या करती, गुस्सा भी करती और मारती भी। बाबा ने कहा मारो, कितना भी बच्चा तंग करे, कुछ भी करे, गुस्सा भी नहीं कर सकते और मार भी नहीं सकते, क्यों? हाँ, बाबा का डायरेक्शन है। देखो बच्चों के अंदर भी ये बात है, कंप्लेन कहाँ करनी मम्मी की। तो मैंने कहा आपने कुछ काम किया होगा। हाँ मैंने तो किया ना, मैं उसको बताया कि मम्मी मैंने होमवर्क नहीं किया, तो मेरे को इतना जोर से थप्पड़ लगाई, फिर सेंटर पर एग्जाम थी, मुरली की एग्जाम लेते हैं ना, तो व्यक्तवाणी की एग्जाम थी, तो वो मम्मी बैठ करके स्टडी कर रही थी, कहता है अभी मालूम पड़ेगा कितनी मेहनत करनी पड़ती पढ़ाई में। तो ऐसे देखो बच्चे नोट करते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले हमें नोट करते हैं, इसीलिए हमारा अपने आप पर अटेंशन का पहारा बहुत जरूरी है। और कौन सी इंद्रिया आती है, मुख कान आंखें, नाक भी आता है। माया क्या करती है, उसको नाक ही बहुत अच्छा लगता, नाक में दम कर देती है, नाक में दम करती अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्प, विकल्प से तो चलो मुक्त हो गए, परंतु अभी भी व्यर्थ संकल्प की बहुत भाई बहनों की कंप्लेन रहती, इसीलिए व्यर्थ संकल्प आने का मुख्य कारण है विचार सागर मंथन की कमी। रामनाथ भाई बहुत अच्छी युक्ति बताते कि अगर विचार सागर मंथन नहीं चलता तो मुरली के कुछ पॉइंट अपने पास लिख करके रखो या घर में एक छोटा सा बोर्ड बना के रखो, रोज की मुरली के पॉइंट लिखो, आते जाते वो पॉइंट्स पढ़ते उसके ऊपर मनन चिंतन करो। जब तक हमारा विचार सागर मंथन नहीं चलेगा तब तक हम व्यर्थ से मुक्त नहीं हो सकते। कोई भी ज्ञान की एक पॉइंट ले लो, जैसे कल सभी को होमवर्क मिला था, क्या होमवर्क दिया सचिन भाई ने, मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की क्या क्या मर्यादाएं है वो बैठ करके लिखो। क्यों कहा, अगर हम भूले भी है चिंतन चलने से वो रिवाइज होगी, रिवाइज होते रियलाइज होता है, इसीलिए चिंतन करने की जरूरत है। कई बातें हमको पता होती, जितने क्लास आपने सुने उसमें से कई कोई बात ऐसी नहीं कि जो हमने मुरली में नहीं सुनी, परंतु हरेक भाई बहन का विचार सागर मंथन करके उस ज्ञान की बातों को अपना बनाकर अनुभवी बन करके फिर वो हमको देते, इसीलिए हमको सुनने में उसका मजा आता। पर हमको वो अनुभव में लाने के लिए देखो हमको दे दिया, कितना खजाना मिल गया, हमने सुन लिया, हम खुश हो गए, पर चिंतन कितना चला, स्मृति में कितना रहा, स्मृति स्वरूप कितना बनेंगे। प्रथम स्टेज होती सुनना, दूसरी स्टेज होती समाना, और तीसरी स्टेज होती स्वरूप में लाना। तो सुन लिया लेकिन समाया, साकार मुरली में बाबा बताते हैं कि बच्चे एक गौ को भी अक्ल है, वो भी घास खा लेती है और उसके बाद क्या करती है, उगारती है, रवंत करती है। बाबा कहते हैं बच्चे दही को बिलोएंगे मक्खन निकलता है, और पानी को बिलोते रहो एनर्जी वेस्ट। तो जितना मनन चिंतन चलेगा उतना मक्खन अर्थात शक्तिशाली स्थिति हमारी बनती जाएगी, इसीलिए मनन करने की जरूरत है। लिखा पॉइंट किसने, मर्यादा की। अच्छा, और कुछ नहीं मंथन कर सकते, स्वमान बुद्धि में लाओ, स्वमान की लिस्ट बुद्धि में हो। हमारे पास एक 76 वर्ष की माताजी है, तो उसने रोज दो स्वमान पाठ करते करते श्रावण महीना पूरा उसने 51 स्वमान पाठ किए और एक साथ बोल के दिखाए। श्रावण महीने का होमवर्क, लिखना नहीं जानती, हम लोग लिखते हैं श्रावण महीने में बाबा के कर्तव्यवाचक नाम और साथ में स्वमान, कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा रेगुलर 108। नवरात्रि के 9 दिन भी 108 स्वमान कंपलसरी लिखना है। हफ्ते में एक दिन डायरी लेके आना है, डायरी चेक होती है, अक्षर भी अच्छे हो जाते हैं। और लिखने से एक बहुत बड़ा फायदा ये है, हमारे ब्रेन की अच्छी एक्सरसाइज होती है, फिर हम स्मृति स्वरूप बनने का अभ्यास होता है। इसीलिए लिखना चाहिए। हठ योग के क्लासेस होते हैं ना, योगासन करते, वहां पर ये बात जरूर बताते हैं ट्रेनिंग में कि आप 2 पेज कुछ न कुछ अच्छी बातें लिखो, तो लिखने से मेमोरी शार्प बनती है। कुछ भी लिखो आपको जो अच्छा लगे, और हमें तो कितना बाबा ने लिखने की बातें बताई, कितने पॉइंट्स होती जिस पर हम लिख सकते हैं। एक बार दादी जानकी से हम लोग मिलने गए थे, तो उस समय बड़ी टीचर बहनों की भट्टी थी, तो दादी ने कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि टीचर बहनों की भट्टी है, आज मैं बहनों को क्या सुनाऊं। तो मंथन चलने लगा, दोपहर में दादी को नींद ही नहीं आई, तो दादी का क्या मंथन चला, तो दादी ने कहा मुरली के सारे गीत ही याद आ गए, प्यार किया तो डरना क्या, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। फिर दादी ने कहा वो दिन याद आए, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, और सारा समय मैं खुशी में अंदर अंदर अनुभव करती गई। आज अगर हम कहते हैं भाई 10 गीत सुनाओ मुरली के, एक एक लाइन ही, तो हम सोचने लग जाते 10 स्वमान सुनाओ। कभी कभी गेम होता है क्लास में स्मृति का, तो उसमें हम ऐसे बाबा के 10 कर्तव्यवाचक नाम, दादियों के नाम, यज्ञ के अलग अलग मधुबन के नाम, ब्रह्मा बाबा के नाम, फिर देखते तो ये मंथन जब तक नहीं चलेगा तब तक बुद्धि में आएगा कैसे। इसीलिए मनन चिंतन करने की जरूरत है। जितना मनन चिंतन चलेगा उतना अंतर मन सुख का अनुभव करेगा। अंतर्मुखी सदा सुखी अनुभव करेंगे, और बाबा तो कहते सिर्फ सुख नहीं परंतु अति इंद्रिय सुख। तो अति इंद्रिय सुख की फीलिंग्स भी विचार सागर मंथन करने से ही अनुभव होती है। इसीलिए इस मुख का बड़ा महत्व है, ये मुख की कर्म इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। जितना ये अंतर्मुखी बनते जाएंगे उतनी तपस्या करने में मदद मिलती है। आज हमारा योग क्यों नहीं लगता, कहीं बार कंप्लेन होती भाई बहनों की, योग न लगने का कारण भी क्या है, मन कहीं न कहीं सारा दिन भटकता, फिर बैठेंगे योग में तो वही दृश्य याद आएंगे। और कहीं हमारे रिटायर्ड भाई बहने जो शरीर से थक गए हैं, परंतु हम दादियों को क्यों न देखें, वो क्या करते हैं, हो सकता आप न भी करते हो, लेकिन सुनने में आता देखने में आता कि टीवी देखने का शौक बहुत बढ़ गया, और नहीं तो पेपर पढ़ने का शौक ज्यादा हो गया, इसीलिए पीस ऑफ माइंड चैनल भी देखने के बाद चिंतन चले, और तो हम देखते ही नहीं है। परंतु जो टीवी देखते हैं दुनिया की बातें, जैसे सूरज भाई कह रहे थे, कितनी शक्ति चली जाती। और कल भी आप सुन रहे थे पवित्रता की बात, कि अगर हमने ऐसा देखा भी तो भी वो अपवित्र विचार मन में आना शुरू हो जाते हैं, जो सारे देह अभिमानी के चित्र होते हैं। नहीं, इतना ही तो देखते हैं हम, बहुत अच्छा है इसमें, क्या अच्छा है, सारा समय देह अभिमान में फंसे हुए, और वो देहधारियों को हम देख रहे हैं। यहाँ अपनी देह को भूलना है, वहां हम उनको देख देख करके कहानियां याद करते हैं, कैसी तपस्या होगी बताओ। जो चीज आंखों ने देखी उसका इम्पैक्ट अंदर होता ही है। पहले सिर्फ रेडियो होते थे तो सुनने का इतना असर नहीं होता था, जितना देखना और सुनना जब दोनों एकाग्र होकर देखते और घंटों देखते, उसका कितना असर होता होगा। फिर योग में बैठेंगे, बाबा याद आएंगे, ज्ञान की बातें याद आएगी, क्या याद आएगा, वही देहधारी की बातें, वही सारा समय चर्चा बुद्धि में आएगा। इसीलिए अंतर्मुखी बनने के लिए ये जो बाह्य रस है, ये रसी है ना, आंखों का रस, कोई जा रहा तो देख रहे उसको, क्या देखते हैं, ऐसे देख रहे थे, क्यों देख रहे थे, कोई कारण नहीं था, यह है आंखों का रस जो हमें उस तरफ आकर्षित कर दिया और देखते ही रहे। तो ये रस भी हमको तपस्वी मूर्त बनने नहीं देते, खाने का, पहनने का, देखने का, इसमें शौक भी होते हैं, रस है ना, जिस चीज का रस होता बुद्धि वहां जाएगी जरूर। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे कि अंतर्मुखता का अभ्यास करो, चुप रहो। एक बार मुरली में बात आई, कुछ भी होता है, जैसे हम मौन तो रखते ही है, पर जब कोई ऊपर नीचे ऐसी बात होती है तो अपने आप को कहो मैं चुप रहूंगी। चुप रहने से नुकसान नहीं है, चुप रहने में फायदा है। कोई कुछ भी बोल रहा है तो भी क्या करो, चुप रहो। तपस्वी मूर्त बनने के लिए, इसीलिए तो हमें बताते ना, गौतम बुद्ध को इतनी गाली दी, क्या किया गौतम बुद्ध ने, चुप रहे ना, फिर लिया ही नहीं, चुप रहे, लेना ही नहीं, नहीं उसने ऐसे बोला ना इसलिए मैंने ऐसे कहा, तो वो भी नहीं करना है। बातें छोटी छोटी होती है पर बड़ी काम की होती है। फिर आता है तपस्वी मूर्त बनने के लिए हमारा भोजन पर अटेंशन। हम बाबा की याद में रहकर भोजन बनाएं और बाबा की याद में भोजन ग्रहण करें, क्योंकि अन्न का मन पर असर होता है। इसीलिए बाबा का ये डायरेक्शन है, बच्चे तुम्हें पतित के हाथ का भी भोजन नहीं खाना है, पतित के हाथ का भी नहीं खाना है, परंतु जो हम ब्रह्मा भोजन खाते वो भी बाबा की याद में रहकर खाना है। सवेरे पूछ रहे थे ना भाई, बाबा की याद में रहकर, दृष्टि देकर, फिर भोग लगाकर, जो बाबा के पक्के बच्चे हैं, नियम संयम में पक्के हैं, उनके घर में भोग अवश्य लगना चाहिए। सुनते हैं ना सभी, भोग लगाने से भोग मिट जाते हैं। पहले कहती थी बड़ी दीदी, बाबा को भोग न लगाने के बिना खाना खाना माना बाबा की चोरी करना, इसीलिए थाली सामने आती और भोग लगाते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन रोज हम तीन टाइम भोजन करते हैं उस पर पूरा अटेंशन होना चाहिए। टेबल टॉक भी हम कर लेते हैं, लेकिन हम अटेंशन रहे कि बाबा जिस विधि से कहते हैं हम उस विधि से याद में रहकर भोजन स्वीकार करें, क्योंकि हम मायावी दुनिया में रहते हैं तो उसका असर होता ही है, वाइब्रेशन का असर होता ही है। आजकल चीजें भी ऐसी मिलती है, तो वो जितना बाबा की याद में रहकर दृष्टि देकर हम भोजन खाते हैं तो उसका असर जरूर हमारा मन शुद्ध पावन बन जाता। इसीलिए भोजन की परहेज बहुत जरूरी है। जगदीश भाई ने एक बार कहा था कि हम ट्रेन में भी भोजन खाते हैं तो लोगों की नजर हमारी तरफ रहती है। अब वो क्या खाते वो हम नहीं देखते, पर हम क्या खाते, और फिर वो कहेंगे अरे ये देखो योगी लोग, इनका खाना इतना इतना, ये भी लाया वो भी लाया वो भी लाया। ऐसा नहीं, सूक्ष्म भोजन जिसको बाबा कहते, अर्थात हम बाहर भी जाते हैं तो हमारा भोजन पर ध्यान हो। बहुत सारी चीजें ले जाना, एक या दो टाइम का भोजन होता है, जितना जरूरत है उतना ही, दस चीजें थोड़ी बाहर ले जानी। फिर लोगों की दृष्टि भी तो विकारी होती है, इसीलिए सन्यासी लोग जो होते थे पुराने जमाने में कमरा बंद करके खाना खाते थे, किसी के सामने भी नहीं खाना खाते थे, क्योंकि दृष्टि का असर होगा। तो बात ऐसे भी हम लोगों को पता है, नजर लगती है ना, तो जब शुद्ध दृष्टि का प्रभाव पड़ता तो विकारी दृष्टि का भी तो प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बाबा की याद में बना हुआ भोजन, कभी कभी भाई बहने कहते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो है घर में, एक व्यक्ति ज्ञान में चलता, सब तो नहीं चलते, तो जरूर उनके हाथ का खाना पड़ता, बना भी नहीं सकते हैं, तो इस धारणा में और हम पक्के हो जाए, योग युक्त होकर के ही भोजन करना है। याद में रह कर के भोजन खाने से वो वाइब्रेशन शुद्ध हो जाते। एक बहन है जो डॉक्टर है, तो उसने कुछ रिसर्च कर रही है अन्न के ऊपर मन का असर, तो वो ज्ञान में चलती पुणे में रहती त्रिवेणी बहन है, तो उसने एक सब्जी बनी हुई थी ड्रमस्टिक की और रोटी बनी हुई थी, भोग लगाने के पहले फोटो निकाला और भोग लगाने के बाद उसी चीज का फोटो निकाला। तो जब भोग लगाने के बाद का फोटो था उसके अंदर ना व्हाइट व्हाइट ऐसे जैसे कुछ चमक रहा है, तो वो संतोष दीदी को बता रही थी कि दीदी बाबा की याद में भोग लगने के बाद जो वाइब्रेशंस होते हैं वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो भोजन था ये ब्राह्मण बच्चों के हाथ का बना हुआ, उसका पहला फोटो जो था उसमें एक ऐसे पीले कलर की लाइनें थी, वरना वो शुद्ध भोजन था और इसमें वाइब्रेशन पड़े बाबा के, इतना उसके अंदर उसी समय का वो अंतर बताया। और फिर एक अज्ञानी के घर का उसने भोजन का फोटो लिया और उस फोटो के अंदर ब्लैक ब्लैक ऐसे डॉट डॉट थे, तो उसने जब वो फोटो बड़ा करके बताया तो बताया कि बाबा हमें कहते हैं कि बाबा की याद में भोग लगा करके भोजन खाने से इतना असर होता है। तो इस बात को हम अंडरलाइन करें, हम लूज हो जाते हैं लेकिन इसका इतना असर होता है, अन्न का मन पर। और यही तो तपस्या के लिए जरूरी है ना। ब्रह्मा भोजन का महत्व भी कब है? ये ब्रह्मा भोजन सतयुग में नहीं मिलेगा। ब्रह्मा भोजन खाने से देवता बनते हैं, तो देवता ही संस्कार भी तो उससे बनेंगे। इसीलिए शादी में गए, नहीं बहन जी हम है ना प्याज लहसुन नहीं खाते, सिर्फ क्या किया पूरी और मिठाई खाया, किसके हाथ का बना हुआ खाया। असर करेगा या नहीं करेगा? पार्टी में गए और कुछ नहीं खाया, आइसक्रीम ही खाई, पता क्या उस आइसक्रीम में क्या डाला था। और जैनी लोग देखो कितनी मेहनत, वो नहीं खाएंगे ऐसी चीज, उनको तो इतनी प्राप्ति भी नहीं है। हमको कितनी प्राप्ति है? तो हमारा अटेंशन रहे, भोजन पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मन मनाभव होके रहना है। मन पर इसका असर होता, मन का भोजन जैसे बाबा की मुरली, उसमें पर चिंतन पर दर्शन की परहेज, ऐसे ये भी परहेज है। तपस्वी बनने के लिए ये बातों का अटेंशन। हमें जंगल में बाबा ने जाने का डायरेक्शन नहीं दिया, वो तो जंगल में चले गए, कंदमूल खा रहे, पर हम राजयोगी है। इसीलिए बाबा कहते अपने हाथ से बनाओ और प्यार से भोग लगा कर खाओ, कोई चीज न खाओ। ये कहा बाबा ने, सब कुछ खाते, सेंटर पर क्या नहीं चोली बनती। हमारी एक माता है, वो हमेशा सेवा में आती, उसकी बहू बोलती है जितना हम लोग नहीं खाते उतना आप लोगों को मिलता, क्योंकि हर त्योहार सेंटर पर मनाया जाता, हर एक जाति धर्म भाषा के बाबा के बच्चे हैं, तो अलग अलग वैरायटी बनती है ना सेंटर पर। लौकिक दुनिया में क्या होगा, ज्यादा ही ज्यादा श्रीखंड बनेगा, पूरन पोड़ी बनेगी, दिवाली आएगी तभी ज्यादा बनेगा और खीर बनेगी। इधर सेंटर पर तो हर गुरुवार क्या होता, हर गुरुवार त्योहार होता है, फिर कोई आया क्लास कर रहा है तो टोली, तो बहने सोचेगी ना कि हर टाइम थोड़ी नारियल की मिठाई खिलाओ, तो कभी क्या बनता कभी क्या बनता, क्या नहीं 56 प्रकार के भोग हमें मिलते। गिनती करना कि एक साल में सेंटर पर क्या क्या मिठाई खाई, तो आपको ही आश्चर्य लगेगा, अच्छा इतनी मिठाइयां मिली। क्योंकि हम तो सतयुगी दुनिया में दैवी स्वराज में जाकर के रोज 56 भोग खाने वाले हैं, तो वो यहाँ बाबा सब कुछ अनुभव कराते हैं, लेकिन मर्यादा जो बताई है उस अनुसार हमें चलना है। फिर बाबा कहते हैं बच्चे सेवा भी जरूर करो, तपस्वी मूर्त आत्मा के मन वचन और कर्म के द्वारा ऑटोमेटिक सेवा होती रहेगी, उन्हें करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक उनके द्वारा बाबा सेवा कराते रहते हैं। देखो एक बहन ने अपना अनुभव बताया कि कलकत्ता में एक कोई वीआईपी आए थे और वो बहन ने आधा पौना घंटा वीआईपी को समझाया, फिर उसने कहा अच्छा हमारे दादी जी से आप 5 मिनट मिलेंगे। उस वीआईपी को इतना मन में दादी के मिलने का नहीं था, परंतु फिर भी चलो 2 मिनट है। तो दादी जी ऐसे बैठे, निर्मल शांता दादी जी बैठे थे, और उस बहन ने दादी जी को दादी जी के पास ले गए। दादी जी ने कोई जास्ती ज्ञान नहीं दिया, 2-3 बातें पूछी होगी, तो वो वीआईपी भाई को टोली दी और वो भाई चले। तो वो भाई ने उतरते समय उस बहन को कहा आपने आधा घंटा ज्ञान सुनाया ना, उसका मुझे इतना महसूस नहीं हुआ, पर दादी माँ के पास बैठने से महसूस हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आए थे, हम सब थे तभी। दादी जानकी जी से मिलकर के कितने गदगद हो गए, इतने गदगद हो गए। दादी से वाइब्रेशन प्राप्त हुए, कौन से? तपस्या के। तो लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या। लेकिन तपस्या करने के लिए इन सब बातों को हमें फॉलो करना, जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हमें भी करना, जो दादियों ने किया वो हमें भी करना है। तो करते करते ही तो बन जाएंगे ना। अच्छा, ओम शक्ति। ये भी बाबा ने पुरुषार्थ कराया। उषा दीदी नहीं आई, योग करेंगे।
भंडार है परमानंद वसुधा पर छलकाए पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़ कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए।